Om Shanti. Good morning. आज की morning आत्मचिंतन से शुरू हुई. सुबह उठते ही कौन से विचार चले. अगर दिनचर्या की शुरुआत श्रेष्ठ चिंतन से करेंगे तो सारा दिन ऑटोमेटिक श्रेष्ठ विचार आते रहेंगे. तो राजयोग के प्रथम सत्र में आप सभी ने स्वयं का सत्य परिचय प्राप्त किया. ये कितनी बड़ी अज्ञानता रही कि हम जीवन भर खुद को देह ही समझते रहे, जिस कारण देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ. देहभान के कारण कितने डिफरेंसेस जीवन में उत्पन्न हो गए. ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये युवा है, बूढ़े हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ब्राह्मीण है, ये बनिया है, ये गुजराती, ये मराठी. पूरा विश्व इस बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण विभाजित हो गया. इसलिए अब हमें ये अभ्यास करना है आत्मस्मृति का, ताकि फिर से जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, आत्मस्वरूप, वो सोल कॉन्शियसनेस फिर से आ जाए. तो प्रथम लेसन से तीन अभ्यास अगर आप रोज बार बार मन ही मन करते रहेंगे तो हम अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकते हैं, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बन सकते हैं. पहला अभ्यास है आत्मस्मृति में रहना. उठते बैठते चलते फिरते कर्म करते हमें मन ही मन ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूं, ज्योति बिंदु हूं. हमें स्पष्ट रहे कि शरीर तत्वों से बना है, जड़ है, नॉन लिविंग है. मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूं. दूसरा अभ्यास आत्मदृष्टि से देखना. अब तक हम देह दृष्टि से देखते रहे, जिसके कारण दैहिक आकर्षण उत्पन्न हुए. अब हमें पता है कि मैं आत्मा हूं, प्रत्येक व्यक्ति एक आत्मा है और हम सभी आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे, आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई है. तो अब हम देह दृष्टि से न देखें. हमें स्पष्ट है कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है. मैं स्त्री हूं, गलत. मैं पुरुष हूं, ये रॉन्ग कॉन्शियसनेस है। शरीर से कोई स्त्री है, शरीर से कोई पुरुष है। हम तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो हम इस आत्मिक दृष्टि से, रूहानी दृष्टि से हरेक को देखें। और तीसरा अभ्यास, सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को सो जाते हैं तब तक जो भी कर्म करते हैं, हम लक्ष्य रखें हमें हर कर्म आत्मधर्म में स्थित होकर करना है। कल आपने ये समझा है कि सभी आत्माएं अपनी ओरिजिनल नेचर से शांत है, शुद्ध है, पवित्र है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज हैं। हम अपने गुण धर्म में स्थित होकर हर कर्म करें तो हम अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो ये तीन अभ्यास करते रहेंगे तो सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे। और जैसे ही आप सोल कॉन्शियस बनेंगे, आपका नेचुरल अटेंशन परमात्मा की ओर जाएगा, क्योंकि परमात्मा हम आत्माओं के पिता है। इसलिए सोल कॉन्शियस बनेंगे तो ही गॉड कॉन्शियस बन सकेंगे। यही कारण है कि भक्ति में अनेक साधन सामग्री का आधार लिया, अनेक प्रकार के क्रियाकांड किए, फिर भी मन परमात्मा में एकाग्र क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मन भटकने का एक कारण था बॉडी कॉन्शियसनेस। देहाभिमान में रहेंगे तो देह के मित्र संबंधी दुनिया की बातें याद आएंगी। सोल कॉन्शियस बनेंगे तो परमात्मा से मन जुड़ेगा। इसलिए आज के सत्र में हम उस परम चैतन्य शक्ति परमात्मा पिता के बारे में जानेंगे कि आखिर वो पिता परमात्मा कौन है, जिसको हम जन्म जन्मांतर से याद करते रहे हैं, जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, प्रभु, परमेश्वर कहकर याद करते रहे हैं। लेकिन वो एक पिता परमात्मा कौन है, उनका सही परिचय क्या है, ये हम नहीं जानते हैं। ये भी हम जानते हैं कि परमात्मा एक है। गॉड इज वन कहते हैं, सबका मालिक एक कहते हैं। और ये विवेक की बात भी है कि परम सुप्रीम ऊंचे ते ऊंच एक ही हो सकता है। फाइनल अल्टीमेट अथॉरिटी एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती, अनेक नहीं हो सकती। जब परमात्मा एक है तो उनका सत्य परिचय भी एक होना चाहिए। आज एक परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताएं हैं, अनेक मते हैं, जिसको श्री कृष्ण से प्यार है वो श्री कृष्ण को ही परमात्मा समझते हैं, जिनको श्री राम से प्यार है वो श्री राम को ही भगवान समझते हैं, कोई नेचर को गॉड समझते हैं कि चारों ओर प्रकृति का जो अपार सौंदर्य फैला है ये प्रकृति ही परमात्मा है, कोई आत्मा को ही परमात्मा समझते हैं। इसलिए शिवो हम ब्रह्मो हम कहते हैं, अपने आप को भगवान समझकर उनकी पूजा भी करवाते हैं। कोई सब में भगवान है, तेरे में मेरे में कण कण में सांप में सुअर में कछ में मच में सब में परमात्मा है, ऐसी मत देते हैं। तो एक परमात्मा के बारे में आज अनेक मते हैं और इन मूल सत्यों के बारे में हरेक का अपना अपना चिंतन रहा, अपनी अपनी मतें हरेक ने दी, इसी के कारण अनेक धर्म संप्रदाय मठ पंथ बन गए हैं। इसलिए परमात्मा की मान्यता प्राचीन होते हुए भी उनका सत्य हम नहीं जानते हैं, इसलिए अनेक मतें हैं। अनेक मतों के कारण ही आप देख रहे हैं कितने लड़ाई झगड़े हैं। ये अनेक मतें ही सिद्ध करती है कि परमात्मा का सत्य परिचय हम नहीं जानते हैं। आपका सही परिचय क्या है? कोई कहे ये है, कोई कहे वो है, अनेक मतें हो जाएं तो आपका सही परिचय आप खुद ही दे सकेंगे ना, कि आप अनेक बातें करते हैं परंतु मेरा रियल परिचय ये है। ऐसे परमात्मा के बारे में जब अनेक मतें हो जाती हैं तब स्वयं परमात्मा आकर अपना सत्य परिचय हम आत्माओं को देते हैं। तो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ब्रह्मा मुख से उनके सत्य परिचय की परिभाषा हमें बताई है कि वास्तव में परमात्मा किसको कह सकते हैं। पहले तो ये स्पष्ट हो कि परमात्मा का सही परिचय, उनकी सही व्याख्या क्या है। तो पांच बातें मैं आपको बताऊंगी जिससे हम वेरीफाई कर सकेंगे कि वास्तव में परमात्मा किसको कह सकते हैं। पहली बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जिसे सभी माने, कुछ माने दूसरे ना माने, तीसरे और कुछ माने, उसको परमात्मा नहीं कहेंगे। परमात्मा कोई एक धर्म, कोई एक देश, कोई एक जाति समाज के पिता नहीं है। परमात्मा समग्र विश्व के पिता है, सर्व आत्माओं के परम पिता है। इसलिए परमात्मा का सत्य परिचय उसे ही कह सकते हैं जिसे मुख्यतः सभी धर्म की आत्माएं मान्य करें। दूसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। हम जानते हैं जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी अवश्य होती है। जो शरीर धारण करते हैं वे शरीर छोड़ते भी हैं। इसलिए कहा जाता है कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। ये प्रकृति का नियम सबको लगता है कि जो शरीर धारण करेंगे वो शरीर छोड़ते भी हैं। जो जन्म लेते हैं प्रकृति के बंधन में बंधते हैं, स्थल और काल के बंधन में बंधते हैं। प्रकृति के शरीर को धारण करने से ये लिमिटेशंस आ जाती है। जो जन्म लेते हैं कर्म बंधन में बंधते जाते हैं, क्योंकि शरीर धारण करने के बाद चैतन्य शक्ति आत्मा एक क्षण भी कर्म किए बिगर रह नहीं सकती है। श्वास लेना, जीवन जीना, आंखों से देखना, ये प्राकृतिक क्रियाएं शुरू हो जाते हैं। जो जन्म लेते हैं वो देह संबंधों में बंधते हैं। बच्चा पैदा होते ही परिवार का सभ्य बन जाता है। वो किसी का बेटा है, भाई है, पोता है, संबंधों में बंधते हैं। जो जन्म लेते हैं सुख दुख के बंधन में आते हैं, क्योंकि सही गलत या साधारण जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें ही भोगना होता है। इसलिए परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म मरण के, प्रकृति के, कर्म के, देह संबंध के, सुख दुख के बंधनों से मुक्त है। इसलिए परमात्मा को सदा मुक्त, सदा स्वतंत्र कहते हैं। और देखो, भक्ति में भी हम सभी अक्सर भगवान से मुक्ति मांगते रहते हैं, हमें दुखों से छुड़ाओ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर सुख चैन की दुनिया में ले चलो, हमें इस भव के फेरे से छुड़ाओ। हम भगवान से मुक्ति मांगते हैं, अंडरस्टूड है जो स्वयं मुक्त होगा वही तो हमें मुक्ति दे सकेगा। इसलिए परमात्मा सभी बंधनों से, सभी प्रभावों से, सभी लेपों से मुक्त है। तीसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो सबसे परम है, उसके ऊपर और कोई आत्मा नहीं है जो उनके माता पिता शिक्षक गुरु बन सके। वे ही परम ऊंचे ते ऊंचे हैं, इसलिए हम उसे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु कहते हैं। हम ये भी महिमा गाते हैं कि परमात्मा पिताओं के भी पिता है, शिक्षकों के भी शिक्षक है, गुरुओं के गुरु, नाथों के नाथ, पतियों के पति उसे कहा जाता है। वो ही परम शक्ति, परम सत्ता है, उनके ऊपर और कोई नहीं है। चौथी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो सदा परम है। ऐसे नहीं कि आज परम है, धीरे धीरे मध्यम अधम हो जाएंगे, नहीं। हम मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, समय और प्रकृति के संसर्ग में आकर हमारे गुण, कर्म, स्थिति बदलते रहते हैं। परमात्मा अपरिवर्तनशील, परम सर्वोच्च है, इसलिए ऊंचे ते ऊंचा उसका गायन। और पांचवी बात, परमात्मा उसको कह सकते हैं जो सर्वज्ञाता है और सदा दाता है। सर्वज्ञाता माना जो सब कुछ जानते हैं, सृष्टि के आदि मध्यांत, आलोक परलोक को भी जानते हैं, जो ज्ञान के सागर हैं, नॉलेजफुल हैं, जो सारे ही सनातन सत्यों को जानते हैं। इसलिए परमात्मा सत्य है और वे ही आकर सारे यूनिवर्सल ट्रुथ्स का ज्ञान हमें देते हैं। इसलिए आप देखो, आज इतने धर्म संप्रदाय हैं, इतने संत ऋषि मुनि हुए हैं, इतने चिंतक, लेखक, वैज्ञानिक हैं, इतने रिसर्च वर्क हो रहे हैं, इतनी किताबें, शास्त्र ग्रंथ हैं, इसके बावजूद भी क्यों हम परमात्मा को ही कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सतगमय? क्यों हम परमात्मा को ही कहते? क्योंकि हरेक आकर अपनी अपनी मतें सुनाते हैं, परमात्मा आकर ही इन मूल सत्य शक्तियों का ज्ञान देते हैं। इसलिए परमात्मा को हम सर्वज्ञ कहते हैं। आत्माओं के लिए हम क्या कहते हैं? मनुष्यात्माओं के लिए हम क्या कहते हैं? कि मनुष्यात्माएं अल्पज्ञ है, हम जानते हैं और भूल जाते हैं। हम स्मृति विस्मृति को प्राप्त होते रहते हैं। परमात्मा सदा ज्ञान का सागर है, इसलिए हम कहते हैं कि वे सदा जागती ज्योत हैं, अर्थात ज्ञान के सागर हैं और सदा दाता है। सदा दाता है, इसलिए भक्ति में भी हम गायन करते हैं, शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सद्गति दाता, वे सदा दाता है। ऐसे नहीं है हमारे मांगने पर, रिक्वेस्ट करने पर देते हैं, नहीं, वो है ही सदा दाता। सदा शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति वो देते ही रहते हैं। हम मनुष्यात्माएं सदा दाता नहीं है, है? हाँ, नहीं। बेशक हम मनुष्यात्माएं पहले दाता थी, देवता थे, भारत को देव देवियों की भूमि कहा जाता है। देव देवी मीन्स देने वाले, दाताओं की भूमि। इसलिए आप देखिए देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाते हैं, दाता, वरदाता। इसलिए पहले हम देवता थे, आज हम क्या बन गए हैं? लेवता बन गए। अभी हम देवता नहीं रहे, हम लेवता बन गए। हमें हरेक से चाहिए चाहिए, कोई ना कोई अपेक्षाएं हमें रहती है, हम लेवता बन गए। परमात्मा सदा दाता है, तो परमात्मा के सत्य परिचय की इस परिभाषा की 5 बातें आपको बताई। इन 5ों ही बातों को बुद्धि में रखकर अब आप सोचिए कि इस परिभाषा के अनुसार सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते हैं? हम तो भक्ति में भावना से सबको भगवान समझते रहे, अनेकों को भगवान मानते रहे, परंतु बहनों और भाइयों, परमात्मा केवल भावना का विषय नहीं है। परमात्मा सत्य है, उसको सही रूप में जानना है, पहचानना है। इसलिए ये 5ों ही बातें बुद्धि में रखकर अब आप बताइए, क्या आप और मेरे जैसे साधारण मानव शरीरधारी मनुष्यत्माओं को परमात्मा कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं। तो सबसे पहला सत्य बुद्धि में ये स्पष्ट कर लीजिए कि जन्म मरण के चक्र में आने वाली कोई भी देहधारी मनुष्यात्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। हम मनुष्यात्माएं परमात्मा की याद से महात्मा बन सकते हैं, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा बन सकते हैं, परंतु परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा कोई बनता नहीं है, परमात्मा कोई पोस्ट, पोजीशन या डिग्री नहीं है जो हम पुरुषार्थ करके प्राप्त कर ले। परमात्मा कोई बनता नहीं है, अनादि अविनाशी एक परम आत्मा है ही, कोई नए परमात्मा बनते नहीं जाते। जैसे एक बच्चा पिता जैसा रूपवान, गुणवान, ज्ञानवान, बुद्धिवान, धनवान, बलवान बन सकता है, फिर भी पिता पिता है और पुत्र पुत्र है, रचयिता रचयिता है, रचना रचना है। इसलिए हम मनुष्यात्माएं परमात्मा जैसे ज्ञानवान गुणवान बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा ही नहीं बन जाते। इसलिए कोई भी मनुष्यात्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। दूसरी बात अंडरस्टूड है, जो भी साधु सन्यासी हैं, ऋषि मुनि हैं, गुरु विद्वान पंडित आचार्य संत महंत जो भी हैं, वे महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। बेशक हम उनको महात्माएं कह सकते हैं, बल्कि सत्य तो ये है कि परमात्मा की याद से, योग साधना से ही तो वे महान बनते हैं। तो वे महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। परमात्मा का सत्य परिचय न जानने के कारण कोई थोड़ी भी रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाते हैं, हम उनको भगवान समझने लगते हैं। लेकिन अब आपको स्पष्ट रहे, वे महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। तीसरी बात, जो भी धर्म स्थापक हुए हैं, जिन्होंने इस सृष्टि रंग मंच पर आकर अपने अपने धर्म की स्थापना का कार्य किया है, हम उनको धर्मात्मा कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। चाहे इस्लाम के अब्राहम हुए, यहूदियों के हजरत मूसा हुए, गौतम बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, जीसस क्राइस्ट हुए, गुरु नानक जी हुए, शंकराचार्य जी हुए, ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। इन धर्म स्थापकों ने स्वयं भी कहा है कि हम उस गॉड के मैसेंजर हैं, हम उस खुदा के पैगंबर हैं, हम परमात्मा के पुत्र हैं। इन धर्म स्थापकों ने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा, ये उनके फॉलोवर्स हैं जो समय बीतने पर उस परम शक्ति परमात्मा को भूल जाते हैं और अपने अपने धर्म स्थापक में केंद्रित हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। तो ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। और चौथी बात, बहुत विवेक से, निष्पक्ष भाव से समझनी है। हिंदू भाई बहने जिन भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मान्यता मानते हैं, जो भी देवी देवताओं को मानते हैं, चाहे श्री लक्ष्मी नारायण है, श्री राम सीता है, श्री राधे कृष्ण है, श्री अम्बा दुर्गा सरस्वती है, श्री गणेश हनुमान महाकाली है, जिन भी देवी देवताओं को पूजते हैं, कितने देवी देवताओं को मानते हैं, हर गांव के अलग अलग, हर कुल के अलग अलग, जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, वो देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। वे देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। इन देवी देवताओं को देखो, सभी धर्म वाले नहीं मानते हैं, तो उनको हम परमात्मा कैसे कह सकते हैं? इन देवी देवताओं के जन्म की, जीवन की, मृत्यु की पूरी कथाएं सुनाई जाती, इनके माता पिता, बंधु, सखा, शिक्षक, गुरु, पत्नी, बच्चे बताए जाते हैं, माना देह संबंधों में बंधे हुए दिखाते हैं। हर देवी देवता को श्रेष्ठ कर्म करते हुए बताते हैं कि उन्होंने असुरों का संहार किया, आततायियों को मुक्त किया, दुखों से छुड़ाया, नरक को स्वर्ग बनाया। हम इन देवी देवताओं को श्रेष्ठ कर्म करते हुए बताते हैं और इन श्रेष्ठ कर्मों के फल स्वरूप आप देखिए, हर देवी देवता को स्वर्गीय सुखों को भोगते हुए दिखाते हैं, राजाई करते हुए बताते हैं। देखो, हरेक देवी देवता के मस्तक पर रत्न जड़ित सुवर्ण ताज बताते हैं, जो धन वैभव और संपन्नता का प्रतीक है। हम हर देवी देवता को सुवर्ण सिंहासन पर बैठे हुए दिखाते हैं, जो दैवी राज्य सत्ता का प्रतीक है। तो जो भोक्ता है उससे परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा की महिमा में कौन से विशेषणों का प्रयोग हम करते हैं कि वे अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, निराकार, निरंजन उसको कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा स्वरूप है जो सभी धर्मों को मान्य है, जिनके कोई माता पिता नहीं बताए हैं, जिनको स्वयंभू कहा गया है, ऐसा कौन सा स्वरूप है? है कोई स्वरूप जो मुख्यतः सभी धर्मों को माने? कौन सा स्वरूप है? तो देखो, मुंझने की बात नहीं है। परमात्मा शब्द ही परमात्मा का परिचय देता है। परमात्मा मीन्स परम आत्मा। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, हमारे अविनाशी पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। मनुष्य का पिता मनुष्य होता है ना, जानवर का पिता जानवर होता है, पंछी का पिता पंछी होता है। हम सर्व ज्योति बिंदु आत्माओं का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो परमात्मा रूप से परम नहीं है। परमात्मा अपने गुणों से, कर्तव्यों से ऊंचे ते ऊंचे है। इसलिए रूप ज्योति बिंदु है, परंतु परमात्मा गुणों के सिंधु है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं चित्र में किरणों के रूप में परमात्मा की महिमा का वर्णन किया है। तो रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। और आप देखिए इस चित्र में कि परमात्मा का दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप विश्व के मुख्यतः सभी धर्मों को मान्य है। भारत के हिंदू भाई बहने ज्योति बिंदु परमात्मा की भक्ति में ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में पूजा करते। जानते हो ना, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। शिवालय शिवलिंग तो हर शहर, गली गली, गांव, जंगलों में भी शिवालय पाए जाते हैं। परमात्मा इतने बड़े लिंगाकार नहीं है। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। ये भक्ति में पूजन करने के लिए उनका यादगार बड़ा प्रतीक बनाया गया, जिसे ज्योतिर्लिंग शिवलिंग कहते। इसलिए अमरनाथ, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इवन नेपाल में पशुपतिनाथ, जहां ज्योतिर्लिंगम की पूजा की जाती, इवन आप देखिए रामेश्वरम में श्री राम को भी शिव का पूजन करते हुए बताते हैं। आप वृंदावन गोपेश्वर में जाएंगे, श्री कृष्ण जी को भी शिव का पूजन करते नमन करते बताया है। एक और विवेक की बात आपको बताएं, स्वयं शंकर जी को भी शिवलिंग के आगे ध्यान करते हुए बताते हैं। देखा है ऐसा चित्र आपने, हाँ? आगे शिवलिंग है और शंकर जी ध्यान अवस्था में बैठे हैं, उनको तो योगी ही कहते हैं। तो सोचने की बात है कि शंकर जी स्वयं परमात्मा होते तो वो किसके ध्यान में क्यों बैठे हैं? परमात्मा को तो कोई ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है ना। शंकर जी ध्यान अवस्था में योगी तपस्वी रूप में बताए जाते हैं, मीन्स उनके ऊपर भी कोई परम शक्ति है जिसके ध्यान तपस्या में वो बैठे हैं। वो परम चैतन्य शक्ति परमात्मा को ही कहा जाता है। इसलिए शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा है, शंकर जी आकारी देवता है। इसलिए आपने देखा होगा शिवलिंग पर त्रिपुंड करते हैं और ऊपर बिंदु करते हैं। ये त्रिपुंड त्रिदेव रचयिता ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा का ये प्रतीक यादगार रूप में ये रसम रिवाज किए जाते हैं। इसलिए देवों के भी देव त्रिदेव रचयिता ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा को माना जाता है। अब आप देखिए मुस्लिम भाई बहने वो तो स्पष्ट कहते ही हैं अल्लाह नूर है। हम हिंदी भाषा में कहते हैं परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, वे अपनी अरबी भाषा में कहते हैं अल्लाह नूर है। और वे स्पष्ट कहते हैं परमात्मा ये भौतिक प्रकाश बिंदु नहीं है, नूरे इलाही कहते हैं। इलाही मीन्स अलौकिक अभौतिक। परमात्मा कोई ये भौतिक प्रकाश बिंदु नहीं है, अलौकिक दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। गौतम बुद्ध जी को देखिए, महावीर स्वामी जी को आप देखिए, ध्यान अवस्था में बताते हैं तो वे किसके ध्यान में बैठे हैं? किससे बुद्धत्व मिला? वो है परम चैतन्य शक्ति परमात्मा जिससे स्पिरिचुअल अवेयरनेस आती है, आत्मा जागृत होती है। जीसस क्राइस्ट ने भी स्पष्ट कहा है गॉड इज लाइट, आई एम ए सन ऑफ गॉड। अपने आप को परमात्मा नहीं कहा है उन्होंने, स्पष्ट कहा है गॉड इज लाइट। इसलिए क्रिश्चियन भाई बहने चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं और प्रेयर करते हैं। गुरु नानक जी ने एक निराकार की ही महिमा की है, एक ओमकार निराकार सतनाम कर्ता पुरुष, एक अकाल मूरत की ही महिमा की है। कोई देहधारी का वर्णन नहीं किया है। तो जो भी धर्म स्थापक हुए उन सब का मूल इशारा एक ही रहा है कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। पारसी भाई बहने परमात्मा के ज्योति स्वरूप को आतश अग्नि के रूप में पूजते हैं। यहूदियों का भी इतिहास पढ़ा होगा, हजरत मूसा को भी ज्योति का प्रथम दर्शन हुआ। तो विश्व के जो भी मुख्यतः धर्म हैं, इनके मूल धर्म स्थापकों का एक ही इशारा है कि परमात्मा एक है, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप। उनको हमारे जैसा शारीरिक प्राकृतिक आकार नहीं है, इसलिए हमारी तुलना में निराकार कहा जाता है। निराकार का अर्थ ये नहीं है कि उसका कोई आकार नहीं, उनका अपना दिव्य आकार ज्योति बिंदु स्वरूप। तो अपनी बुद्धि में ये स्मृति पक्की कर लीजिए कि जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मेरे अविनाशी पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप। परमात्मा को शरीर नहीं है, इसलिए हमारे जैसा शारीरिक संज्ञावाचक नाम भी नहीं है। हमारे नाम शरीर से पड़ते हैं ना, हमारे नाम और गुण अलग अलग भी होते हैं। नाम शांति बहन होगा परंतु अशांत ही रहते हैं। नाम मन सुख राम होगा, मन से दुखी ही रहते हैं। हमारे नाम और गुण अलग अलग भी होते हैं। परमात्मा का नाम गुणों से है, कर्तव्यों से है। वे सारे विश्व का कल्याण करते हैं, इसलिए परमात्मा का मूल नाम शिव है। शिव मीन्स कल्याणकारी, बेनिफैक्टर, कल्याणकारी। इसलिए परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। परमात्मा सत्य है, अविनाशी है, थे हैं और रहेंगे। शिव मीन्स कल्याणकारी है। सुंदर मीन्स सदा पावन है। भक्ति में उनके अनेक गुणवाचक नाम है, अनेक कर्तव्यवाचक नाम है। उससे महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर कहते हैं। भोलानाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, अनेक नामों के शिवालय बने हैं, पर है तो शिव के ही मंदिर। तो ये भक्ति में अनेक गुणवाच्यक कर्तव्यवाच्यक नाम है। हमें ये नामों की लिस्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मतलब परमात्मा के गुण और कर्तव्यों से है। हम यहाँ उनके मूल नाम को याद रखते हैं, कल्याणकारी शिव, जिसको प्यार से शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा मीन्स शिव पिता। बाबा माना यहाँ कोई साधु बाबा की बात नहीं है, बाबा मीन्स पिता। परमात्मा हमारा पिता है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। हमारे लिए सबसे खुशी और गर्व की बात यही है कि हम भगवान के बच्चे हैं। खुशी है सबको? देखो कोई नहीं बोलते, भूल गए हैं ना, देह भान में आ गए हैं, देह के मित्र संबंधियों को याद करते हैं। हम अपने आप को भूल गए, अपने असली पिता परमात्मा को भूल गए। प्रैक्टिकल हम उनसे रिलेशन भी नहीं निभाते हैं, इसलिए खुशी भी नहीं है, गर्व भी नहीं है। वरना आप देखिए, एक ऑफिसर, मिनिस्टर, उद्योगपति, डॉक्टर के बेटे को भी कितना नशा होता है कि पता है मैं किसका बेटा हूँ, मेरे पिता कौन है पता है, कितनी अथॉरिटी दिखाते हैं। हमें नशा ही नहीं है, हम भगवान के बच्चे, क्योंकि हमारा भगवान से प्रैक्टिकल कोई नाता नहीं है। हम मानते हैं, जानते भी नहीं हैं, फॉलो भी नहीं करते। जिस परमात्मा की भक्ति में कितनी महिमा करते हैं, चित्र में उनकी महिमा बताई है। हम कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है, शांति के दाता है, दुख हरता सुख करता है, पतित पावन है, सर्व के सदगति दाता है, दिव्य बुद्धि के वरदाता है। भक्ति में भगवान के गुणों का, शक्तियों का, कर्तव्यों का कितना गायन करते हैं। हम कहते हैं ना कि सारी पृथ्वी का कागज बना दिया जाए, समुद्र की स्याही बना दी जाए, हर वृक्ष की डाली की कलम बनाकर स्वयं सरस्वती निरंतर लिखती रहे, तदपि हे इश तव गुणानाम पारम न याति, तेरी महिमा अपरंपार। ऐसे ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के सागर दाता परमात्मा के हम बच्चे हैं, हम कैसे होने चाहिए, हम कैसे होने चाहिए? सिर्फ भगवान की गायन, महिमा, आरती कर लेने से क्या होगा? हम भगवान के बच्चे, हम भी तो उनके जैसे होने चाहिए ना? शेर का बच्चा क्या होता है? शेर होता है ना। तो भगवान के हम बच्चे भी कैसे होने चाहिए, भगवान जैसे। पर हम अपने आप को भूल गए, अपने धर्म कर्म को भूल गए, अपने पिता अपने धाम को भूल गए, तो साधारण मानव बन गए। ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर दाता परमात्मा कौन सा कार्य करते? परमात्मा कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार जादू नहीं करते हैं। अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि चमत्कार मनुष्य गुरु भी करते हैं, ये परमात्मा का कार्य नहीं है। परमात्मा वो कार्य करते हैं जो कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। चित्र में बताया है वे हमें पतित से पावन बनाते हैं। जब सारा विश्व विकारों के पंजे में फंस जाता है, हर मनुष्य आत्मा देह अभिमान के वश काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं, सारा विश्व पतित भ्रष्ट बन जाता है, तब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, सत्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं। सत्य ज्ञान और योग की शक्ति से हमें पतित से पावन बनाते हैं। वे हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। आज तो हम क्या कहते हैं, इंसान इंसान नहीं रहा है, हैवान बन गया है, कहते हैं ना ऐसे। बिल्कुल पतित असुर बन गए हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि असुर कोई अलग योनि के भयानक प्राणी पाताल में रहते हैं और देवताएं कोई आसमान में काल्पनिक है और हम इस मृत्यु लोक के मानवी हैं, ऐसा नहीं है। हम मनुष्यात्माएं ही जब दिव्य गुणों से संपन्न पवित्र थे, हम ही देवता कहे जाते थे, संसार ही स्वर्ग था, हम ही देवताएं थे, भारत ही स्वर्ग था। जन्म मरण में आते आते दिव्य गुणों को गंवा दिए, पवित्रता गंवा दी, हम साधारण मानव बन गए। आज हम मनुष्यात्माएं देह अभिमान में आकर विकारी पतित भ्रष्ट बन गए, हम ही असुर बन गए, संसार नरक बन गए। इसलिए स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है, नहीं, यही विश्व स्वर्ग था, हम ही देवता थे, आज हम ही असुर बन गए, संसार नरक बन गए। इसलिए परमात्मा आकर हमें सच्चा मानव पवित्र योगी बनाते हैं। सच्चे मानव से संपूर्ण मानव देवता बनाते, इसलिए इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। हम कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे श्री नारायण बन सकता है, नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी बन सकती है। वो कौन सी करनी हम करें, वो ही कर्म की गति का गहन ज्ञान परमात्मा आकर हमें देते हैं। न सिर्फ हम मनुष्य आत्माओं को देवता बनाते हैं, पूरे संसार को स्वर्ग बनाते हैं, सतो प्रधान सतयुगी दुनिया बनाते हैं। तो ये है विश्व परिवर्तन करना, विश्व पिता परमात्मा का कार्य। ऐसा कार्य करने के लिए स्वयं परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं, खुद आते हैं, इसलिए ही खुदा कहे जाते हैं। परमात्मा इस सृष्टि पर आते ही ना हो, हमें मिलते ही ना हो, तो हम उनको क्यों याद करते हैं, हम उनको क्यों बुलाते हैं। जरूर हमने उनसे सुख पाया है, तब तो हम उनको याद करते हैं। तो परमात्मा सृष्टि पर कब आते हैं, कब आते हैं, हर कोई जानते हैं। कौन सा श्लोक बोलते हैं? हाँ देखो, हर भारतवासी जानते हैं, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, अधर्म अति फैल जाता है, तब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। इसी धर्म ग्लानि के समय को मुस्लिम भाई बहने कयामत का समय कहते हैं, क्रिश्चियन भाई बहने फाइनल डिसीजन डे कहते हैं, यहूदी भाई बहने उसे डूम्स डे कहते हैं। ये आप जानते हैं, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। मेरा आप सबसे प्रश्न है, अति धर्म ग्लानि कब होती है, कब होती है, किस युग में होती है? कलयुग में, न कि सतयुग में, न कि त्रेता युग में, न कि द्वापर युग में। कलयुग अंत अति धर्म ग्लानि का समय है। आप सबको यहां बुलाकर यही परमात्मा संदेश देना है कि वर्तमान समय ही अति धर्म ग्लानि का समय, यही कलयुग अंत का समय है। चारों ओर नजारे देख रहे हैं आप सभी भी कि आज कितना इंसान पतित भ्रष्ट बन गया है, हर मानव मन में कितने विकार है, काम वासना है, कितनी गंदी दृष्टि वृत्ति है। सुनते हो ना समाचार, क्या क्या संसार में हो रहा, चित्र में वो ही बताया है कि ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, जिसके चार युग हैं, स्टेजिस है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। वर्तमान समय है कलयुग अंत, सतयुग आदि का संधि काल, संगम युग। जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, साधारण मानव तन ब्रह्मा तन में दिव्य प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा द्वारा इस ज्ञान यज्ञ की रचना करते हैं, जिसको ब्रह्मा कुमार कुमारियां पवित्र योगी भाई बहने अपने तन मन धन और मन वचन कर्म से इस यज्ञ को चलाते हैं। परमात्मा कोई द्रव्य यज्ञ नहीं रचते हैं, इसमें कोई जौ घी तिल लकड़ी होमने की बात नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ है। चित्र में आप देखिए, एक तरफ नरक हेल बताया है, दूसरे तरफ स्वर्ग हेवन बताया है। जो कलियुगी नर नारी इस ज्ञान यज्ञ में आकर खुद की बुराइयों को स्वाहा करेंगे, वे आने वाली सतयुगी दुनिया में देवी देवता बनेंगे। इसलिए परमात्मा का हम सभी आत्माओं के लिए यही दिव्य संदेश है कि वर्तमान समय महापरिवर्तन की वेला है। अब कलियुग खत्म होगा, पुनः सतयुग आएगा। ये साइक्लिकल ऑर्डर है, रात के बाद दिन आता है ना, ऐसे कलियुग के बाद पुनः सतयुग का समय है। जो कलियुगी आत्माएं अभी संधि काल में अपने आप को पवित्र योगी दिव्य बनाएंगे, वे आत्माएं सतयुगी दुनिया के अधिकार को प्राप्त करेंगे। इसलिए वर्तमान समय वर्ल्ड साइकल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय चल रहा है, जब स्वयं परमात्मा हमें मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। कौन कौन बनना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, सबने हाथ नहीं उठाया, क्यों भाई? कुछ खराब भ्रष्टाचारी पापाचारी बनने की बात करें तो आप हाथ ना उठाएं, पर मनुष्य से दिव्य बनने की बात तो सबको स्वीकार होनी चाहिए ना। हाँ, अब फिर से हाथ उठाओ, खुद दिल से उठाओ। अच्छा, महान श्रेष्ठ तो बनना ही है ना। बहुत अच्छा। और लास्ट बात, परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ ना कि परमात्मा इस दुनिया में नहीं रहते हैं। जरूर परमात्मा कोई निश्चित स्थान पर रहते हैं, जहां से सृष्टि पर अवतरित होते हैं। कल प्रथम लेसन में आप सभी ने समझा है कि हम मनुष्य आत्माएं भी इस दुनिया की निवासी नहीं है, हमारे लिए भी ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, ये हमारा घर नहीं है। इसलिए तो कहते हो ना, अकेले आए हैं अकेले जाना है। तो कहां से आए हैं, कहां जाना है? चित्र में बताया है, सबसे नीचे आसमानी रंग से वो ये साकार मनुष्य लोक का है। पांच तत्वों की बनी हुई ये दुनिया है। हम आत्माएं इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर कर्म करते हैं कर्म फल भोगते हैं। जब ये दुनिया हमारा भी घर नहीं है तो सदा पावन परमात्मा का ये घर कैसे हो सकता है। इसलिए हम आत्माओं का असली घर, हमारे पिता परमात्मा का असली घर परम धाम है। चित्र में सबसे ऊपर गोल्डन रेड कलर से बताया है, वो है हमारा परम धाम, जिसको हम शांति धाम, मुक्ति धाम कहते हैं। वहां अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व छाया हुआ है। उस ब्रह्म तत्व में हम ज्योति बिंदु आत्माएं रहते हैं, इसलिए उसे ब्रह्म लोक परलोक कहते हैं। वहां शरीर नहीं है, प्रकृति नहीं है, कर्म नहीं है, हम साइलेंस की स्थिति में हम आत्माएं वहां रहते हैं, इसलिए उसे साइलेंस होम कहते हैं। हम आत्माएं इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर कर्म करते हैं, इसलिए इस दुनिया को कर्म क्षेत्र कहते हैं। परमात्मा हर 5000 वर्ष के बाद कलयुग के अंत, सतयुग आदि के संधिकाल संगम युग में सृष्टि पर अवतरित होते हैं। युगे युगे परमात्मा नहीं आते हैं, युगे युगे आते तो कलयुग कैसे हुआ? फिर परमात्मा ने आकर क्या किया? इसलिए हर युग में परमात्मा नहीं आते हैं, हर कलयुग के अंत, हर 5000 वर्ष के अंत परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। इसलिए ये समय है परमात्मा पिता को जान पहचान कर जीवन के सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ें और उनसे हम पतित से पावन बने, 100% सुख शांति समृद्धि की दुनिया के अधिकारी बने। ऐसे कल्याणकारी, सुखदाता, सदा पावन हम आत्माओं के अविनाशी साथी परमात्मा पिता को बताइए हमें कितना याद करना चाहिए, कितना याद करना चाहिए? पर क्या हम इतना याद करते हैं? नहीं करते हैं, हम भूल जाते हैं। देह संबंधियों को, दुनिया की बातों को याद करते रहते हैं, जबकि हमें अपने पिता को याद कर खुद भी पावन बनना है, उस पिता से योग लगाकर हमें खुद शक्तिशाली बनना है। तो ये है परमात्मा का सत्य परिचय, हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है। अब तक हम महात्मा को, धर्मात्मा को, देवात्माओं को याद करते रहे, परंतु हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है। अब परिचय आपको मिल चुका है। हम मन और बुद्धि से उस पिता को याद कर सकते हैं। आपस में हमारा परिचय होता है, फिर हम उस व्यक्ति को याद करना चाहें तो कर सकते हैं ना। परिचय से ही आगे संबंध जोड़ते हैं, स्नेह होता है और ऑटोमेटिक याद आती है। तो आज अब हम 5 मिनट योग अभ्यास करेंगे, उस पिता को याद करेंगे। सभी अलर्ट होके व्यवस्थित बैठ जाएं। कमर सीधी करके बैठें ताकि आप थके नहीं और आपके चिंतन के वाइब्रेशंस पूरे ऑर्गन्स में जाएं। अपना डायरी, पर्स, फाइल, हैंडबैग, मोबाइल सब समेट कर एक तरफ रख दें, हाथ में गोद में लेकर न बैठे। एक दो से भी अलग अलग होकर बैठे ताकि एक दो के वाइब्रेशंस डिस्टर्ब न करें। हम शरीर से यहां बैठेंगे, मन और बुद्धि से असली घर परम धाम में जाएंगे। मन की आंख से, ज्ञान नेत्र से परम ज्योति बिंदु शिव बाबा को याद करेंगे, प्यार करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके याद और प्यार में एकाग्र होना उसे योग कहते हैं। मैं कमेंट्री दूंगी, इस प्रकार का आपका नया अभ्यास है इसलिए मैं आपको थॉट दूंगी। जो विचार मैं दूं वो मुख से रिपीट नहीं करना है, आवाज नहीं करना है, हमें मन ही मन रिवाइज करना है, दोहराना है, अर्थ समझ कर अनुभव में स्थित होना है। कुछ क्षणों के लिए आसपास की व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से डिटैच हो जाइए, अलग हो जाइए, साक्षी बन जाइए। अब अपने मन बुद्धि देहभान से निकाल, मस्तक बीच भ्रुकुटी में आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं आत्मा मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक इन कर्मेंद्रियों की कंट्रोलर हूं। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। मेरा असली घर शांति धाम है। मन और बुद्धि से अपने असली घर को विजुअलाइज करें। परम ज्योति बिंदु शिव पिता को भी मन की आंख से देखें। मेरे अति प्रिय परम पिता आज आपके सत्य परिचय को पाकर मुझे अपार खुशी हो रही है। आपके सद्ज्ञान को पाकर मेरे मन का अंधकार अज्ञान अंधकार समाप्त हो गया है। मेरी बुद्धि जाग गई है। मुझे स्पष्ट है कि मैं आत्मा कौन हूँ, मेरे पिता परमात्मा कौन है। जीवन का सही ठिकाना मुझे मिल गया है। अब मुझे न मन से भटकना है न तन से भटकना है। मेरा यही लक्ष्य है मेरे शिव पिता। आप शांति के सागर शांति दाता है। आप कि संतान में आत्मा भी शांत स्वरूप हूं। प्यार के सागर मेरे प्यारे शिव बाबा मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं सबके साथ प्यार से चलूंगी, सबको सुख दूंगी। मुझे यही निश्चय और खुशी है मैं आत्मा शांत हूँ, शुद्ध हूँ, मैं स्वयं एक शक्ति हूँ। मैं दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, अविनाशी चैतन्य शक्ति। ॐ शान्ति।